नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेस को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है, बीच में आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर्स का, ये कानपुर से कबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर्स का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा कंप्लीट, एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृहमंत्री को बताया कि वे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेंगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेंगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निरंतर बदलाव में विशेषज्ञों की भागीदारी, संस्थागत सहयोग, संवादात्मक शिक्षण और समयानुकूल विषय वस्तु पर बल दिया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि 21वीं सदी में सुशासन के लिए ऐसे प्रशासकों की आवश्यकता है जो निरंतर सीखने, प्रौद्योगिकी, नवाचार और जन भागीदारी के युग में आगे बढ़ने में सक्षम हो। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंची। उनकी ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा कल से शुरू होगी। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में इंग्लैंड और DR कांगो के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।